नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। ओमान में 13 भारतीय सदस्यों वाले एक तेल टैंकर के डूबने के बाद शुरू हुए बचाव अभियान में भारतीय नौसेना भी शामिल हुई। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बांग्लादेश में कोटा सुधारवादियों, पुलिस और सरकार समर्थक छात्रों के बीच झड़प जारी, सभी शैक्षणिक संस्थान अगली सूचना तक बंद। और खेल में, खेल मंत्रालय ने आगामी पेरिस ओलंपिक्स के लिए 117 एथलीटों के दल को मंजूरी दी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा।
अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनाती के इच्छुक अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 30,000 रूपये प्रतिमाह से अधिक वेतन देने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार 60,000 रूपये की वार्षिक सब्सिडी देगी। श्री सैनी ने कहा कि स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5,00,000 रूपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को भी प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के अंतर्गत मुआवजा और निशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत की विश्व की फार्मेसी की प्रतिष्ठा के अनुरूप विश्व स्तरीय दवा नियामक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग के बीच लगातार विचार विमर्श होते रहना चाहिए। श्री नड्डा ने आज दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के विनियमन पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर दवाओं के उत्पादक और निर्यातक के तौर पर भारत अग्रणी है। उन्होंने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसईओ से वैश्विक मानकों के अनुरूप समय सीमा के साथ एक रोड मैप तैयार करने को कहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल के साथ के एक साथ उपयोग से दक्षता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश विश्व के शीर्ष 6 जैव निर्माताओं में से एक है और किफायती स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत सबसे अधिक मांग वाला गंतव्य देश बन गया है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। इस दौरान डॉ मांडविया ने कहा कि युवाओं की बदलाव लाने की क्षमता से देश प्रगति और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पुरस्कार विजेता युवाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना और मेरा युवा भारत मंच को और अधिक उपयोगी बनाने पर चर्चा करना था। डॉ मांडविया ने पुरस्कार विजेताओं से मंच को और अधिक संवाद परक बनाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओमान में कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी प्रेस्टीज फाल्कन के पलटने के बाद के तलाशी और बचाव के लिए एक भारतीय नौसैनिक युद्धपोत और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान भेजा गया है। ये टैंकर रास मद्रकाह से लगभग 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में पलट गया, जिसमें कुल 16 सदस्य चालक दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंका के नागरिक शामिल हैं। रविवार को स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 10 बजे जहाज ने ओमान के तट से एक आपात सूचना भेजी थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज मॉरिशस में वहां के पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉ नवीन रामगुलाम और पॉल बेरेंजर से मुलाकात की। डॉ नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी तथा इसे सुदृढ़ करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री पॉल के साथ मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। डॉ जयशंकर ने विपक्ष के नेता डॉ अरविंद बुलेल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि तथा हित के बारे में विचार विमर्श किया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ जारी आंदोलन ने आज हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने ढाका विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के छात्र तथा शिक्षक सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछले दो दिनों में यह आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। सरकार ने सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में भारी संख्या में पुलिस, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और अन्य अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज शाम को कोटा सुधारों पर राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने प्रदर्शन छात्रों से देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए आग्रह किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे निराश नहीं होंगे। नवल संग परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस द्वारा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पर राज्यपाल के खिलाफ कोई भी मानहानि वाला बयान देने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया कि उनके बयानों में किसी भी तरह की अपमानजनक बात नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया था कि वे राजभवन जाने में असुरक्षित महसूस कर रही थीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लड़की बहन योजना की पहली किस्त अगले महीने रक्षाबंधन त्यौहार के दौरान जारी की जाएगी। उन्होंने गढ़चिरौली जिले में एक समारोह में यह जानकारी दी। श्री फडणवीस ने कहा कि 31 अगस्त तक आवेदन जमा करने वालों को जुलाई और अगस्त की किस्तें मिलेंगी। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये दिए जाएंगे। 2.5 लाख रूपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कल दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल उत्तराखंड, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आशुराए मुहर्रम आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। यह दिन पैगम्बर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का प्रतीक है, जिन्होंने कर्बला में सच्चाई, धार्मिकता और न्याय को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। तेलंगाना में हिजरी कैलेंडर के मुहर्रम महीने के 10वें दिन यौम आशूरा मनाया गया। इस मौके पर हैदराबाद में मुख्य जुलूस दबीरपुरा से होते हुए चदर घाट में मस्जिद इलाही पर संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान विट्ठल की कृपा से समाज में खुशी और समृद्धि बनी रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की है, जिसे लड़का भाऊ योजना नाम दिया गया है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में उन्होंने मुख्य रूप से पुरुषों के लिए इस नई योजना की व्यापक विशेषताओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6000 रूपये, डिप्लोमा धारकों को 8000 रूपये और स्नातक डिग्री वालों को 10000 रूपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। सरकार से यह राशि उन्हें उद्योग में ऑन जॉब प्रशिक्षण के दौरान मिलेगी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की सुनहरी पोशाक सुना बेशा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी में हैं। इसके मद्देनजर पुरी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को आज शाम सुना वेशा नामक सबसे विस्मयकारी समारोह में सजाया गया। सुना वेशा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्सव है, जो स्वर्ण आभूषणों के अपने शानदार प्रदर्शन के साथ उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करता है। इसे राज राजेश्वरी वेशा के रूप में भी जाना जाता है और ये एक सुंदर परम्परा है, जहाँ भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने से सजाया जाता है। यह परम्परा भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा कपिलेंद्र देव के शासन से शुरू हुई। श्रद्धालु आज रात 11 बजे तक स्वर्ण परिधान में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोग स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। उनके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में 8 जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6-6 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। इसके बाद गोल्फ में 4, टेनिस में 3, तैराकी और सेलिंग में 2-2 खिलाड़ी हैं। घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन में 1-1 खिलाड़ी भाग लेंगे। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल में शामिल एकमात्र भारोत्तोलक हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को दल प्रमुख बनाया गया है। समाचार कक्ष के लिए प्रियंका अरोड़ा।
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्ष के दौरान नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के तहत 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। रेल मंत्रालय के अनुसार नन्हे फरिश्ते विभिन्न भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए एक समर्पित मिशन है। मंत्रालय ने कहा कि बचाए गए बच्चे को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो बच्चे को माता पिता को सौंप देती है। बचाए गए बच्चों में घर से भागे हुए, लापता, बेसहारा, अपहृत, मानसिक रूप से विकलांग और सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। ओमान में 13 भारतीय सदस्यों वाले एक तेल टैंकर के डूबने के बाद शुरू हुए बचाव अभियान में भारतीय नौसेना भी शामिल हुई। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंध्रिक क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बांग्लादेश में कोटा सुधारवादियों, पुलिस और सरकार समर्थक छात्रों के बीच झड़प जारी। सभी शैक्षणिक संस्थान अगली सूचना तक बंद। खेल मंत्रालय ने आगामी पेरिस ओलंपिक्स के लिए 117 एथलीटों के दल को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।